بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. حضرت جرير بن عبد الله بجلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز ادا کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے کی بیعت کی. میں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، اور بیعت کس بارے میں کی؟ کہ کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا. نماز کو اسپیسیفکلی خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ نماز کے اندر بدنی عبادت آ گئی، جو عبادت انسان بدن سے کرتا ہے، اور زکوٰۃ میں کیا آ گئی؟ مالی عبادت آ گئی. اور کیا فرمایا؟ کہ میں ہر ایک کے ساتھ بھلائی کروں گا، خیر خواہی کروں گا. خیر خواہی یعنی ہر ایک کے لیے اچھا سوچنا. ہر ایک کے لیے کیا کرنا ہے؟ انسان اچھا سوچے. اسی لیے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں، لمبے قد کے صحابی تھے، بڑے خوبصورت صحابی تھے. اسی لیے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کبھی انسان کی شکل میں آتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو ان کی شکل میں آتے تھے، جریر بن عبداللہ کی شکل میں آتے تھے، کیوں؟ بہت ہی خوبصورت صحابی تھے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو فرمایا کہ میں نے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی کروں گا، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، کسی کے لیے یہ نہیں کروں گا. اور جو وعدہ کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے اوپر جو بیعت کی تھی، وہ انہوں نے کر کے بھی دکھائی. مشہور ہے، حضرت علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کسی خادم کو گھوڑا خریدنے کا حکم دیا، گھوڑا خریدنے کا حکم دیا. تو وہ گھوڑا خرید کے لائے تو ان کو لگا کہ بھائی یہ تھوڑا سستا ہے. یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا سستا ہے، 500 درہم کا، 400 درہم کا. تو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پھر بھیجا یا خود تشریف لے گئے کہ بھائی ایسا لگتا ہے کہ آپ کو گھوڑے کا علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے. سنار جو ہوتا ہے اس کو سونے کی قیمت پتہ ہوتی ہے، ورنہ ہمارے جیسے کو تو ہر پیلی چیز کیا نظر آئے گی؟ سونا. ہر پیلی چیز، اور انسان دھوکہ کھا جائے گا. آپ کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز بائی کر لی گئی، بھائی یہ سونا ہے اتنی قیمت دو دو، وہ تو سنار ہی پہچان سکتا ہے کہ یہ سونا ہے یا پیتل ہے یا اس کے اوپر کوئی یلو کلر کا کوئی کلر چڑھایا ہوا ہے. تو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے، عربوں کے پاس گھوڑوں کا علم تھا، جانتے تھے یہ لوگ، کیونکہ انہی کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، گھوڑے اور اونٹ، اسی کے ساتھ ان کی یہ ساری یہ ہوتی تھی. اس لیے ان کو یہ آج بھی عربی گھوڑے جو ہوتے ہیں ان کی کیا ہوتی ہیں؟ بڑی قدر قیمت ہوتی ہے. اسی لیے کسی زمانے میں وہ جو کوئین زندہ تھی تو اس کے پاس بھی عربی گھوڑوں کی، آج بھی ہوں گے میرے خیال سے، اگرچہ یہ لوگ غلط کام میں استعمال کرتے ہیں، بیٹنگ وغیرہ کے اندر، ریسنگ وغیرہ کے اندر اس سے پیسے بناتے ہیں، لیکن جو گھوڑے ہوتے ہیں اس کی ان کے پاس پوری سند ہوتی ہے، ان کے پاس ان کی پوری سرٹیفکیٹ ہوتی ہے کہ یہ عربی نسل گھوڑے ہیں، اس کا باپ کون ہے، اس کا دادا کون ہے، اس کا پردادا کون ہے، یہ گھوڑوں کے متعلق ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ گھوڑا کہاں سے آیا ہے. इसकी चाल चलन से, इसके बहुत सारे निशानात होते हैं, उसकी साइंस होती है, उससे लोगों को पता चलता है कि ये अरबी घोड़े होते हैं। तो ये अरबी घोड़ों के ऊपर पैसे लगाते हैं और इनके पास बड़े महंगे और अच्छी कीमत के, अच्छी नस्ल के घोड़े होते हैं, ठीक है। तो खानदानी घोड़ा है कि भाई इसके बाप दादाओं ने रेस जीती है, तो ये भी क्या नहीं करेगा, डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तो हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्ला बजली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये घोड़ों को जानते थे, उसके पास गए तो कहा कि तुमने जो घोड़ा बेचा है, ऐसा लगता है कि तुमने मजबूरी में कोई कीमत लगाई है, तुमने कोई कीमत मजबूरी में लगाई है, इसकी कीमत नहीं हो सकती, ये कीमत कम है, ये कीमत क्या है, कम है। तो कहा कि मैं तुमको ज़्यादा देता हूँ, तो 500 के 600 की, 600 लगाई, फिर भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि नहीं अभी भी इसकी सही कीमत नहीं लगी है, तो कहा कि मैं तुमको 700 दूंगा। मोहम्मद इसी ने लिखा है कि वो बढ़ाते बढ़ाते जो घोड़ा उन्होंने 500 में बेचा था उसको उन्होंने 800 दिए, हालांकि उन्होंने मांगी नहीं। हमारा होता है कि भाई चलो ये मुर्गा आया है खुद ज़बह होने के लिए, तो इंसान छुरी जो है तेज़ करने का मैं इंतज़ार नहीं करता, उसको वहीं क्या कर दूँ। चूँकि फरमाते हैं कि जरी अब्दुल्ला बजली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम से ये बयात की थी, ये वादा किया था कि मैं हर मुसलमान के लिए खैर ख्वाही का सोचूंगा, हर मुसलमान के लिए भलाई सोचूंगा, और इसकी भलाई यही है कि इसको पूरी कीमत मिले। और आज के लिए बात हमारे अंदर नहीं है, जैसे जैसे नबूवत से दूर होते जा रहे हैं, क़यामत से इंसान करीब होता जा रहा है, इंसान के दिल में ख्वाहिशात, इंसान के दिल में नफसानियात कि भाई इंसान ये भूल ही जाता है कि मुझे इसका हुक्म दिया गया है कि मैं हर मुसलमान के लिए खैरख्वाही के बारे में सोचूं, अच्छी भलाई सोचूं उसके लिए। हदीस में यही फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जरीर अब्दुल्ला बजली व नुस्ह लिकुल मुस्लिम कि हर मुसलमान के साथ भलाई का सोचूं, खैरख्वाही का सोचूं। ये चीज़ तो अल्लाह ने जानवरों में रखी है। देखिए अल्लाह ताला कलाम पाक में फरमाते हैं फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जिसको चाहे ईमान लाए जिसको चाहे कुफर करे। इंसान को पाबंद नहीं बनाया, न ईमान लाने का पाबंद बनाया और न ईमान में आने के बाद अल्लाह ताला ने उसको ज़ोर ज़बरदस्ती की तो अच्छा बनेगा, उसका बदला अच्छा मिलेगा। तू बुरा बनेगा, बुरा रास्ता इख्तियार करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तुझे ही रेडी रहना पड़ेगा। तो ना इस्लाम में आने के लिए जोर ज़बरदस्ती है लायक रहा फिद्दीन, अब आ गया तब भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तेरे सामने अच्छाई का रास्ता है, तेरे सामने बुराई का रास्ता है, किस रास्ते पर तू चलेगा वो तेरे लिए। ये चॉइस अल्लाह ने दूसरी मखलूक को नहीं दी। दूसरी जो क्रिएशन है अल्लाह ताला की, दूसरी जो मखलूकात है, अल्लाह ने ये ऑप्शन उनके लिए नहीं रखा। सूरज चांद वल्कमर कद्दरनाहु मनाज़िल, सूरज के लिए वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिल्लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, कहा कि चांद का रूटीन हमने फिक्स कर दिया है, वो अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है, सूरज की चाल हमने फिक्स कर दी, कितनी स्पीड से चलना है, कितनी तेज़ी से चलना है, कहाँ से निकलना है, कितने बजे निकलना है। कहा कि अल्लाह ने सारी चीज़ें उसके लिए मुतय्यन फरमा दी, न सूरज चांद से आगे जा सकता है कि कभी चांद के दिल में एक ख्वाहिश हो कि भाई तू ही आगे आगे रहता है, कभी मुझे भी आगे निकलने दे। जैसे कि इंसान सुबह उठता है तो बहुत से मरता है कि आज काम को नहीं जाऊं भाई, 25 साल से काम कर रहा हूँ, उस दिन नौजवान में लगा कि रिटायर होने जाता हूँ क्योंकि 25 साल काम किया। तो सूरज कभी ये कहे कि भाई हजारों साल से निकल रहा हूँ, अभी एक दिन नहीं निकला तो क्या, आज मैं छुट्टी लेने के मूड में हूँ, आज मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ, क्या आज ना निकलूँ। बहुत सी मतलब इंसान करता है ना कि भाई मुँह बिगड़ गया है, कुछ अच्छा खाने का, कुछ तीखा खाने का मन करता है, कुछ खट्टा खाने का मन करता है, तो इंसान कभी कभी ऐसी चीज़ें, सूरज सोचता है कि भाई मैं हर जगह एक ही हजारों सालों से एक ही जगह से निकल रहा हूं, तो आज जरा कोई डिफरेंट जगह ट्राई करनी चाहिए, थोड़ा सा हट जाऊं वहां से। नहीं, अल्लाह ने उनके उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं रखा है, उनकी चाल को फिक्स कर दिया अल्लाह ताला ने, उनकी स्पीड को फिक्स कर दिया, उनके रूटीन को फिक्स कर दिया, उनकी जगहों को फिक्स कर दिया, उनके टाइमिंग को फिक्स कर दिया। कल की तारीख को देख लीजिए, 29 तारीख, और 1000 साल पहले की आप 29 तारीख को निकाल लीजिए, इसी महीने की इस 29 तारीख को जो सूरज जितने बजे तुलू होगा, 1000 साल पहले भी वो इतने ही बजे तुलू होता था, 1000 साल के बाद भी वो इतने ही बजे तुलू होगा, क्योंकि वो अल्लाह ने उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं रखा, कोई ऑप्शन नहीं रखा, न एक दूसरे से आगे बढ़ सकते हैं एक दूसरे, हाँ जब अल्लाह को मंजूर होगा, जब अल्लाह को मंजूर होगा, जो कयामत की बड़ी निशानियों में से है कि सूरज मगरिब से तुलू होगा, वो फिर वो तो फिर अब दुनिया का निज़ाम क्या होने लगेगा, ख़त्म होने के करीब जाएगा, वो कयामत की निशानियों में से, वरना चूंकि वो भी अल्लाह ही के हुक्म से होगा, वरना सूरज अपने हुक्म से कुछ करना चाहे नहीं कर सकता। चांद कहता है कि भाई मैं तो ठंडा ही हूँ, बहुत सालों से मैं ठंडा हूँ, चलो आज रात में मैं थोड़ा सा क्या हो जाऊँ, गर्म हो जाऊँ, नहीं हो सकता, अल्लाह ने कोई यही नहीं रखी उनके पास। जानवरों के अंदर चीज़ें देख लीजिए, अल्लाह ने जेनेटिकली उनके अंदर उलूम को अल्लाह ने ट्रांसफ़र किया है, भाई किसी गाय की, किसी भैंस की, किसी बकरी की, किसी परिंदे की कोई आपने इंस्टीट्यूट देखी है वहाँ पर कि क्या उनके उनके लिए कोई ट्यूटर देखा है आपने, कोई ट्यूशन ये देखा है, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी देखी है कि जहाँ इनको सिखाया जाता हो कि इनको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, कोई देखा है? जेनेटिकली अल्लाह ने उनके अंदर चीजें रख दी, उनको अपनी अच्छी बुरी चीजें पता है। शेर कभी घास नहीं खाएगा और गाय कभी गोश्त नहीं खाएगी, और खाएगी तो है कि नहीं, यूके की मशहूर है ना मैट काउ डिसीज, सुना है ना, यहाँ का तो बड़ा मशहूर है यूके का मैट काउ डिसीज, किसी जमाने के अंदर उन्होंने हजारों गायों को क्या कर दिया था, मार दिया था, और फिर क्या क्या सामने आया था, इन्होंने गाय को क्या खिलाया था, गोश्त खिलाया था, जिसकी वजह से गाय क्या हो गई थी, पागल हो गई थी। क्यों? मसला यही है भाई, जब तुम अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम के अंदर इंटरफेरेंस करने की कोशिश करोगे, उसके बनाए हुए निज़ाम को टच करने की कोशिश करोगे, उसको बदलने की कोशिश करोगे, तो फसाद और हलाकत के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है, नुकसान ही मिलेगा, क्योंकि उसका बनाया हुआ निज़ाम है, उनके लिए किसी ट्यूटर की ज़रूरत नहीं, उनको पता है कि हमें क्या खाना है, हमें क्या नहीं खाना है, इनको किसने सिखाया भाई? गाय का बच्चा पैदा होगा तो किसी कौन से मदरसे में गया, कौन से स्कूल में गया कि वो सीधा घास की तरफ जाएगा, वो क्योंकि कोई गोश्त क्यों नहीं खाता है, अल्लाह ने जेनेटिक के लिए फितरी तौर पर अल्लाह ने ये चीजें उनके अंदर रख दी। अल्लाह ताला शहद की मक्खी के मुताल्लिक कलाम पाक में फरमाते हैं, वअहा रब्बुका इलन नहल यानी तखिद मिनल जिबाल बुयूतन वमिन الشجر ومما يعرشون, फिर आगे क्या फरमाते हैं, ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا وأوحى। यहाँ पर लफ्ज वही का है, लेकिन यहाँ पर वो वही मुराद नहीं है जो अल्लाह ताला नबियों की तरफ भेजते हैं, वअوحى से यहाँ पर इंस्पिरेशन, अल्लाह ताला ने हनी बी को, शहद की मक्खी को गाइड किया। अब देखिए ये शहद की मक्खी है, अल्लाह ने जो इंस्पिरेशन, अल्लाह ने जो उसको तालीम दी है वो किसी मदरसे में नहीं गई, तो वो अल्लाह के गाइडेंस के मातहत काम कर रही है। खुद अल्लाह ताला फरमाए, सुम्मा फसलुकी सु बोला रब्बी की जरूरत, जो रास्ता तेरे रब ने दिखाया उसी पर चलना है। अब वो अल्लाह के गाइडेंस के अंदर काम कर रही है। आप देखिए शहद की मक्खी चाहे वो अफ्रीका की हो, चाहे अमेरिका की हो, एशिया की हो, या किसी मुल्क की हो, या आप 1000 साल पहले की मक्खी को देख लीजिए, आज की देख लीजिए, 50 साल के बाद देख लीजिए, शहद का जो छत्ता होता है वो कैसा होता है भाई, हेक्सागन होता है, जो हाउस जो उसका होता है, उसका जो छत्ता होता है, उनकी स्टाइल एक ही है। किसी मुल्क में चले जाएं, किसी मुल्क में चले जाएं, इंसान इंसान का घर इनका, ये इनका घर है, ठीक है। हर मुल्क में, किसी मुल्क में सारी शहद की जो मक्खियां हैं उनका घर एक ही है। 1000 साल पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा है, इंशाल्लाह आगे भी ऐसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उनके काम, वो किसकी गाइडेंस में काम कर रही है? इंसान के घर स्टोन एज के अंदर अलग थे, पत्थरों से बना इसमें रहता था इंसान। हिंदुस्तान पाकिस्तान में जाए तो वहां के घर अलग है, कोई 1 महीना 6 महीने वहां रहकर आएगा तो यहां तो उसको प्रिजन लगेगा। वहां माशाल्लाह बड़े बड़े घर होते हैं, कोठियां होती है, कोठी कहते हैं ना, मैंशंस होते हैं। और यहां 10x10 के रूम में उसको क्या लगेगा? वो डिप्रेस फील करेगा, फिर सोचेगा कि कब यार, कब भागो यहां से, कब भागो यहां से। अफ्रीका चले जाए, घर अलग है। मुल्क बदलते जाएंगे, सरहदें बदलती जाएंगी, घर बदलते जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंसान काम कर रहा है किसके तहत? अकल। इंसान अपनी अकल से काम कर रहा है। हर जमाने में हर इरा बाई इरा उसके मकान क्या रहेंगे? बदलते रहेंगे। स्काई कैपर्स बनाएगा, फिर उससे भी बढ़ जाएगा आगे, तो ऊपर स्पेस में जाने की ये करेगा। इनका कोई, इनका कुछ नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह की गाइडेंस के मातहत काम कर रही है, शायद की मक्खी। और फिर अजीब बात यह है कि शहद की मक्खी के अंदर अल्लाह ने, चूंकि अल्लाह की गाइडेंस के तहत काम कर रही है, आप देखेंगे कि वो शहद निकाल दी, अल्लाह ने उसको हुक्म दिया, कुली मिन कुल्लिस समरात वा उहा रब्बुका इलन नहल, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझे नेक्टस से, फ्रूट से और फल वगैरह के अंदर से क्या निकालना है? जूस निकालना है। अब इसको ये गाइडेंस किसने दिया? अल्लाह ने दिया। अब अल्लाह के गाइडेंस के साथ वो काम कर रही है, एप्पल के अंदर से वो जूस निकाल दी है, जूस सक करती है, फ्लावर्स के अंदर से निकालती है कि नहीं भाई? उसने जूस निकाल लिया लेकिन वो एप्पल वैसा का वैसा ही, उसने अपना काम कर लिया। उस फूल के अंदर से, उस नेक्टस के अंदर से उसने वो सारा जूस निकाल लिया। वो एप्पल ओरिजिनल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट है, वो फ्लावर वैसा का वैसा ही है। एक इंसान को आप कहिए जिसके ऊपर जो क्या है, बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम सबसे ज्यादा होशियार समझते हैं, है कि नहीं? सबसे ज्यादा क्या है? होशियार समझते। बाकी होशियार होशियार होता जब छोटे थे तो भाई, जब बड़े बात कर रहे होते तो इंसान बीच में बात करने जाता है तो बड़े कहते थे कि भाई तू छोटा है, तुझे समझ में नहीं आता, तुझे समझ में नहीं आता। इंसान चुप हो जाता है कि भाई वाकईतन छोटे हैं, हमको समझ में नहीं आता। अब बड़े हो गए तो बीवी कहती है कि तुम्हें समझ में सब हंस रहे, आप चुप हो जाओ, आपको समझ में नहीं आता। अच्छा भाई चुप हो जा, और क्या। अब जब बूढ़े हो जाएंगे तो फिर बच्चे कहते कि अब आपको समझ में नहीं आता। तो यही समझ में नहीं आता कि समझने की उम्र कौन सी है भाई? समझने की उम्र कौन सी है? बचपन में भी नहीं समझे, बड़े होकर भी नहीं समझे, बुढ़ापे में, तो हमारी को समझने की उम्र ही, तो इस अकल पे क्या होशियारी मारने की भाई? तो अल्लाह ताला ने यह हनी भी को देखे आप कि एप्पल के अंदर से जूस निकाल लेती है लेकिन एप्पल अपनी असली हालत में बाकी है। इंसान जो बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, बेस्ट ऑफ क्रिएशन, सबसे ज्यादा स्मार्ट, जिसके पास फोन भी स्मार्ट, सारी चीजें स्मार्ट, स्मार्ट होम्स आ गए, स्मार्ट कार्स आ गई, अब तो सारी चीजें। लेकिन आप उसको एक एप्पल दे कि भाई इसका जूस निकालो, आप उसका क्या निकालो, जूस निकालो, तो वो जूस निकालेगा तो क्या एप्पल अपनी जगह पर बाकी रहेगा? क्योंकि हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी इंसान की बनाई हुई चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, और इंसान जो है ना, अल्लाह ने इंसान खुद गर्ज है, सेल्फिश है, वो जो भी चीज बनाएगा उसमें अपना फायदा देखेगा। बस में चूंकि, और मक्खी जो है वो किसके गाइडेंस में काम कर रही है? अल्लाह के दिए हुए, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चल रही है, फायदा भी उठा लेती है। एप्पल अपनी जगह के ऊपर बाकी है, हम बेस्ट ऑफ द क्रिएशन है, उसके अंदर से नहीं निकाल सकते। अब एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, हजारों दुनिया के साइंटिस्ट को जमा कर लें, यानी बेस्ट नॉलेज रखने वाले, उनके सामने आप एक हजार नहीं, मिलियन नहीं, ट्रिलियन, ब्रिलियन, उनके सामने आप सारी फूलों का, फलों का ढेर लगा दे, उनको कहें कि एक हनी का ड्रॉप बना दो इसके अंदर से, एक क्या बना दो, एक शहद का कतरा बना दो, बना सकते हैं वो? वो बनाएंगे तो भी पता नहीं वो कैसा बनेगा। और ये जो खालिस जो हनी बी का निकाला हुआ है, कितनी स्मार्टली, कितनी बेहतरीन अंदाज में वो काम कर रही है। इंसान का मसला ही है, जहां भी इंसान अल्लाह के बताए हुए रास्ते से हटेगा वहां क्या आएगा, गड़बड़ आएगी, वहां हालात आएंगे, वहां फितने आएंगे, वहां आजमाइशें आएंगी, वहां उसको रिजल्ट मिलने वाला नहीं, क्योंकि तू रास्ते से हट गया है। ये सारी चीजें अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चल रही है, इनके लिए कोई नुकसान नहीं। मुझे जो असल बताना है इस बात के ऊपर, खैरख्वाही के ऊपर जो मुझे बात बताना है, कि अल्लाह ने ये चीज इनके अंदर रखी है। हनी भी जो है, जो माहिरीन है, जूलॉजिस्ट हैं, वो जो कहते हैं कि एक लीटर हनी के लिए वो 10,000 किलोमीटर का सफर करती है। एक लीटर हनी के लिए 10,000 के करीब वो क्या करती है, किलोमीटर्स का ये लगाती है। अल्लाह ने इनके अंदर खैरख्वाही का जज्बा कैसे रखा है? माहिरीन लिखते हैं कि जब वो किसी फूल से, किसी फल से जब वो जूस सक कर लेती है, निकाल लेती है, तो फरमाया कि उसके ऊपर एक ड्रॉप, जब उसके अंदर कुछ बाकी नहीं रहता है तो एक ड्रॉप उसके ऊपर छोड़ के जाती है, उस फ्रूट के ऊपर, उस फल के ऊपर, उस फ्लावर के ऊपर एक ड्रॉप हनी का छोड़ के जाती है, ताकि मेरे बाद जो मेरे जो दूसरे हनीबीज हैं, जो शहद की मक्खी है, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे फेलोज हैं, वो जब आए तो इनका वक्त भी ज़ाया ना हो और इनके मेहनत भी ज़ाया ना हो। ये इनके वक्त की भी कदर करते हैं, इनके मेहनत की भी कदर करते हैं। इसलिए आपने बहुत सी मरतबा देखा होगा कि बहुत सी मरतबा एक हनी भी आपने देखा होगा कि शहद की मक्खी आती है, किसी फूल के ऊपर बैठती है, ऐसा लगता है कुछ सूंघ रही है, और सूंघने के बाद उसको वहां से क्या हो जाती है, वो चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसने वो देख लिया कि इसमें कुछ बाकी नहीं रहा है, वो वहां साइन रख कर जाते हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये माहिरीन ने लिखा है। जर्मनी के किसी डॉक्टर ने हनी बी के ऊपर रिसर्च किया 10 साल तक, तो कहा कि अल्लाह ने इसके अंदर इतने, मुसलमान हो गया और कह रहा है कि इतने सारे लेसन्स रखे हैं, इतने सारे लेसन्स रखे हैं, इतने सारे लेसन के, बस इंसान उसके ऊपर, इंसान की अक्ल हैरान रह जाती है। और हमारा क्या है, हमको पता है कि वहां उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, वहां एक वैकेंसी है, जाओ नहीं भाई, उसको पता है कि कुछ है वे नहीं, और जाएगा तभी कुछ मिलने वाला नहीं है, और भेजेगा वहां पर, तो कहा कि भाई बहुत ज्यादा है यहाँ, उसको दिल में यहाँ बहुत भरा हुआ है, इसको बहुत तकब्बुर है, जाने दे, उसको धक्के खाएगा तो समझ में आएगा। ये हमारे यहाँ उसको पता है, वहां भेजेगा कि उस साहब के पास जाओ, वो देंगे माशाल्लाह, बहुत बहुत सखी है, उसको पता है कि वो एक नंबर का कंजूस है, लेकिन फिर भी जानबूझ के भेजता है वहाँ पर, उसको पता है कि कुछ मिलने वाला नहीं वहाँ पर। कहा कि धक्के खाएगा तो ज़रा उसको क्या आएगा, समझ में आएगा, उसको बहुत दिमाग के ऊपर तमड़ी चढ़ गई है। हम ऐसी बात, मक्खियों का हाल ये, मक्खियों का हाल खैरख्वाही का जज्बा भाई, क्या है खैरख्वाही का, ये हमारे अंदर नहीं है, अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखा है, इसमें हमारे लिए सबक है। इन फीदा लिकल आया कि हम दूसरों के लिए किस तरीके से खैरख्वाह बने कि दूसरी मक्खियों का वक्त भी नहीं जाए हो, उनकी ताकत भी ना जाए हो, उनका राउंड भी जाए ना हो। और इंसान खैरख्वाही का जो ऑपोजिट है वो क्या है, बदख्वाही, वो क्या है बदख्वाही। इंसान के दिल में क्या हो, किसी के लिए बुग्ज हो, अदावत हो, हेट्रेड हो, एनमिटी हो, दुश्मनी हो, इंसान किसी के लिए बुरा सोचे। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि हर पीर और जुमेरात को अल्लाह के सामने बंदों के आमाल पेश किए जाते। ऐसा नहीं कि इसी दो दिन, अल्लाह को तो पूरा हफ्ता, पूरा साल, पूरी जिंदगी सब कुछ खबर ही है, लेकिन ये दो दिन इसलिए स्पेसिफिक किए, पीर और जुमेरात का दिन, ताकि उस दिन अल्लाह सुबहान व तआला बंदों के आमाल को देखे और उनके लिए मगफिरत और जन्नत का ऐलान फरमाए। ये इसलिए होता है, पीर और जुमेरात को अल्लाह ताला आमाल को देखते हैं, जब देखते हैं कि इस हफ्ते में उसने कोई शिरक नहीं किया, कोई कुफर नहीं किया, तो अल्लाह उसकी मगफिरत का ऐलान फरमाते हैं। मगफिरत यानी जन्नत का ऐलान फरमाने का मतलब ये है कि ये इंसान कभी ना कभी क्या जाएगा, जन्नत में जाएगा, ये हमेशा के लिए जहन्नम में नहीं रहेगा। लेकिन फरमाया कि जब अल्लाह ताला देखते हैं किसी दो इंसान के बारे में कि इनके अंदर आपस में बुग्ज है, ये एक दूसरे का बुरा सोचते हैं, एक दूसरे की बदख्वाही चाहते हैं, तो इनकी जो मगफिरत है ना वो पोस्टपोन कर दी जाती है, अल्लाह डिले कर देता है, उनकी मगफिरत का ऐलान नहीं होता है। अब सवाल ये है कि भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कि सबकी मगफिरत का ऐलान होता है, जन्नत, जन्नत का मतलब यही है, जन्नत का मतलब यानी ये कभी ना कभी जन्नत में जाएगा, लेकिन बुग्ज रखने वाले, एनमिटी रखने वाले, दुश्मनी रखने वाले, एक दूसरे का बुरा सोचने वाले, कहा कि इनकी इनकी मगफिरत रोक दी जाती है। क्यों रोक दी जाती है? बुजुर्गों ने लिखा है कि फरमाया कि बुग्ज, दुश्मनी, ये ऐसा गुनाह है कि उसमें शिर्क और कुफर का अंदेशा है। दूसरे गुनाह जब इंसान के होते हैं तो अल्लाह अल्लाह के यहाँ कि कम अज कम इसके पास ईमान तो है, और जो दूसरे गुनाह है हो सकता है कि वो तोबा कर ले, तोबा करेगा तो तोबा करने के बाद जन्नत में जाएगा, तोबा नहीं किए तो कम से कम इतना तो होगा कि जितने गुनाह है उसको भुगतने के बाद वो जन्नत में जाएगा। लेकिन बुग्ज और दुश्मनी ये ऐसा गुनाह है, कहा कि बुजुर्गों ने लिखा है कि ये इंसान को बहुत सी मरतबा कुफ्र तक पहुँचा देता है, शिर्क तक पहुँचा देता है, इसलिए उसकी मगफिरत अल्लाह रोक देते हैं, क्योंकि मुशरिक की मगफिरत नहीं होती, मुशरिक की मगफिरत नहीं होती। बहुत सी नमाजी, तस्बीह, वज़ाइफ पढ़ने वाले, इशराक और चाश के पाबंद, अवाबीन के पाबंद, लेकिन उलमा ने लिखा है कि जिसको झगड़ने की आदत होती है, दुश्मनी पालने की आदत होती है ना, वो इंसान के बातिन को अंदर से ख़त्म कर देता है, वो आपकी फ़राइज, वज़ाइफ, वो नवाफिल सब ख़त्म कर देता है, इतना खतरनाक होना है। और ये बुग्ज जो है ना, बुग्ज क्या है, यही दूसरे का बुरा सोचना, दूसरे का क्या सोचना, बुरा सोचना कि भाई इसका तो धंधा बहुत बूम कर रहा है, ये तो बहुत आगे जा रहा है, अब ये इंसान ये करता है कि अब ये किस तरीके से गिरे, इसका नुकसान किस तरीके से हो, ये बीमार किस तरीके से पड़ जाए, सारा इसका धंधा किस तरीके से चौपट हो जाए, ख़त्म हो जाए, ये तमन्ना, ये है बुग्ज। उलमा ने लिखा है बुग्ज, दुश्मनी, अदावत, ये पैदा होती है हसद से, ये पैदा होता है किससे, हसद से। एक इंसान बहुत प्रॉस्पर कर रहा है, बहुत आगे जा रहा है, औलाद उसकी बड़ी अच्छी है, फर्मा बरदार है, नेक है, धंधा उसका अच्छा चल रहा है, जॉब उसकी अच्छी है, घर उसका अच्छा है, गाड़ी सब कुछ उसको अच्छा मिला है। अब इंसान जलता है अंदर, कुछ कर तो सकता नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, माली एतबार से, जिस्मानी एतबार से, हर एतबार से वो बहुत आगे है, कुछ कर नहीं सकता है। अब कुछ कर नहीं सकता है तो वो दिल के अंदर क्या पालता है? दुश्मनी पालता है। अब वही बुक्स उसको इनकरेज करेगा किसकी तरफ, कि भाई इसका किसी के तरीके से सत्यानाश हो जाए, इसका किसी तरीके से नुकसान हो जाए, किसी तरीके से बीमार हो जाए, किसी तरीके से डाउन हो जाए, इसका एम्पायर फॉल हो जाए, बस ये इंसान सोचता है। इसलिए उसको दूर करने का आसान तरीका उलमा ने लिखा कि इंसान क्या करे, हसद से तौबा करे। और हसद को दूर करने का तरीका उलमा ने उसका इलाज बेहतरीन ये बताया, हसद के दूर करने का बेहतरीन इलाज उलमा ने क्या बताया भाई, कि जब किसी के मुतालिक दिल में हसद फील हो, हसद पैदा हो, इंसान उसके लिए दुआ करे। इंसान उसके लिए क्या करे? दुआ करे। दिल तो नहीं चाहेगा, दिल चाहेगा ना चाहे, फिर भी उसके लिए हाथ उठाकर दुआ करे कि अल्लाह अब उसके कारोबार में मुझे हसद है, तो दुआ करे कि अल्लाह उसके कारोबार में खूब बरकत अता फरमा, ठीक है ना। अगर उसकी औलाद में ये है तो इंसान दुआ करे कि अल्लाह उसके औलाद में खूब बरकत अता फरमा। उसकी खूबसूरती में हसद है तो अल्लाह ताला मजीद दुआ करे कि अल्लाह उसको और तरक्की अता फरमा, उसके माल लो जायदाद में खूब तरक्की अता फरमा। तो बोलना तो मुश्किल लगेगा लेकिन फिर भी दिल के ऊपर क्या चलेंगे? आड़े चलेंगे। क्या चलेंगे? आड़े चलेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान, और दूसरी बात उलमा ने लिखी है कि जिस इंसान से हसद हो ना सबके सामने उसकी तारीफ करे। जिससे हसद होता है इंसान कभी उसकी तारीफ नहीं करता। आसान तरीका कि लोगों के सामने उसकी क्या करे, उसके सामने उसकी तारीफ करे। दिल पर बोझ पड़ेगा जब इंसान दुआ करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, तो आप खुद ये महसूस करेंगे कि वो जो जज्बा है ना हसद का वो क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। और मैंने एक बात ये भी लिखी है कि बुग्ज कहाँ से पैदा होता है पता है? इंसान किसी की बुराई क्यों चाहता है? हसद की वजह से। हसद हुआ कुछ कर नहीं सकता, ये बहुत सी मरतबा बुग्ज क्यों पैदा होता है। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बुग्ज को दूर करने के दो तरीके और बताए। हज़रत वाला थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके दो तरीके और बताए। एक तो क्या है कि इंसान किसी से उम्मीद न रखे, किसी से होप तवक्कुआत न रखे, किसी से उम्मीद न रखे। इसीलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ ये जुमला मंसूब है कि लोग तकलीफ नहीं पहुंचाते, उनसे वाबस्ता उम्मीदें तकलीफ पहुंचाती है। आपने उम्मीदें कायम करके रखी है कि भाई ये मेरा दोस्त है, ये तो कभी मुझे क्या नहीं करेगा, लेट डाउन नहीं करेगा, है ना। ये तो मेरा करीबी है, ये मुझे यानी इसकी शादी में जाना तो पक्का है, ये तो मुझे बुलाएगा, ये तो मुझे दावत के लिए बुलाएगा। अब मेरी उम्मीद उससे वाबस्ता हो गई, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं। अब दावत नहीं आई तो क्या करेगा? दिल में तकलीफ। अब यही तकलीफ किस में बदलेगी? दुश्मनी में। बुग्ज रखेगा आप, अच्छा इसने मुझे लेट डाउन कर दिया। उसको उम्मीद है कि ये मेरा ये काम करेगा, ये मेरी इज्जत करेगा, ये मेरा ये करेगा वो करेगा। अब नहीं हुआ तो दिल में क्या हुई? तकलीफ। दिल में एक गिड़ा पड़ गई, एक नॉट आ गई। अब इंसान बदले के चक्कर में पड़ता है, दुश्मनी आती है, फिर अब बुग्ज आता है। अब जब बुग्ज आता है इंसान उसके लिए बुरा सोचता है। तो पहला तो आसान तरीका यह है कि किसी से उम्मीद ही ना रखे। हाँ, किसी से कोई अच्छी चीज मिल जाए, किसी से कोई अच्छी चीज मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करे। भाई इंसान कबर्ड के अंदर, किसी ड्रोवर के अंदर, उसको पता है कि भाई यहाँ मुझे पैसे मिलने हैं, मैंने पैसे रखे हैं। अब इसी उम्मीद के साथ वो उसने ड्रोवर खोला, कबर्ड खोला, ये देखा वो देखा, पैसे मिले नहीं तो क्या होगी? तकलीफ होगी ना। क्या मेहनत भी गई, कब से ये कर रहा हूँ, वैसे ही कपड़े तलाश कर रहा था और पैसे मिल गए तो खुशी होगी ना। यही इंसानों का मामला है। किसी से उम्मीद रखोगे, इंसान की उम्मीदें हमेशा क्या देगी? तकलीफ देगी। उम्मीद मत रखो। किसी से कोई भलाई मिल जाए अल्लाह का शुक्र अदा करो। اور دوسرا حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرو نا تو واپس بدلے کی امید نہ رکھو. کسی کے ساتھ کبھی بھی اللہ موقع دے اچھائی کرنے کا تو ریٹرن کی امید نہ رکھو, نیکی کر دریا میں ڈال. یہ بچپن میں ہم نے پڑھا, نیکی کر دریا میں ڈال, یعنی کیا مطلب کہ بھائی دریا میں ڈالی ہوئی چیز واپس ملنے کی کوئی امید نہیں ہے, یعنی نیکی کر کے بھول جاؤ. اس کی طرف سے کوئی احسان مل گیا, کوئی بدلہ مل گیا, کوئی فیور مل گیا تو اللہ کا شکر ادا کرو. تو حدیث پاک میں فرمایا کہ انسان ہر ایک کے ساتھ کیا کرے, اچھائی خیر خواہی کا معاملہ کرے. آگے کی حدیث بالکل وہی ہے, آخری حدیث اس باب کی, عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم, کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا, حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. کسی بھی سچویشن کے اندر آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ڈیل کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ یہ کر رہے ہیں, تو آپ یہ سوچو کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں کیا چیز پسند کرتا, میں اپنے لیے کیا چیز پسند کرتا, وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. اگر میں اپنے لیے عزت کو پسند کرتا ہوں کہ لوگ میری عزت کریں, تو آپ اس کے ساتھ بھی عزت کا معاملہ کریں. آپ آنر پسند کرتے ہیں, اس کو بھی عزت دیں. ہر چیز کی اسی طرح آپ ذلت ناپسند کرتے ہیں, برائی ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی آپ کی ڈس رسپیکٹ کرے, کوئی آپ کی انگلی اٹھائے, تو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کریں. اللہ تعالیٰ کہی باتوں پر مجھے بھی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب ہوں. درشے پر لیجیے. سبحان اللہ.